اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم پارہ نمبر 15 شروع کریں گے. سورت بنی اسرائیل کے آغاز سے شروع ہے اور سورت تھلکاہف کی کچھ آیات پہ پورا ہوگا. اس پورے پارے میں جس چیز کو ہم اس دفعہ دیکھیں گے وہ ہے جلد بازی، ہیسٹینس. بعض لوگ دنیا میں بہت جلد بازی کا اظہار کرتے ہیں، جس سے نقصان کیا ہوتا ہے کہ جو چیز ان کے ہاتھ میں ہوگی وہ بھی نہیں ملتی. پارے کے آغاز میں سورت بنی اسرائیل ہے اور بنی اسرائیل کے نام سے ہی احساس ہو رہا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کی کوئی خاص بات ادھر بیان ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے کچھ واقعات کو بنیاد بنا کر قوموں کے عروج اور زوال کی بات کر کے بتا دیا، نہ تو کسی قوم کا عروج اوور نائٹ آتا ہے اور نہ زوال. جلد بازی میں آپ کہیں کہ ایک دن میں ہی کوئی قوم ڈوب جائے یا ڈوبی ہوئی قوم اوپر آ جائے تو یہ ممکن نہیں ہوتا. پھر اسی میں رات اور دن کی باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی. بنی اسرائیل کے عروج و زوال سے فائدہ اٹھا لو، رات کے دن میں بدلنے کو دیکھ لو. پھر اس میں بہت ساری نشانیوں پہ غور و فکر کرایا جائے گا. حضرت نوح کی قوم کی ہلاکت کی بات ہے اور سب سے بڑھ کے نامہ اعمال، اس کی بات بہت آپ کو اس بارے میں ملے گی. پھر ماں باپ کے بارے میں بہت خوبصورت آیتیں ہمارے آج کے بارے میں، اور آج کے ہمارے معاملات میں جو چیز ہم نے دیکھنی ہے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بہترین سلوک اور ان کے معاملے کو دیکھنا ہے. اور خاص طور پہ پھر سورت بنی اسرائیل کی یہ بات یاد رکھے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور میں نازل ہوئی تھی جب لوگ مطالبے کرتے تھے. میں نے پیچھے تذکرہ کیا تھا کہ ادھر آپ کو بہت زیادہ انداز سورت الانعام والا لگے گا. تو جن لوگوں کے اندر ہدایت کی طلب نہیں ہوتی نا، بس وہ ایک مطالبے پہ دوسرا، اچھا یہ کر دیں، وہ ہو گیا، اب کیا کرے، کچھ اور کر دیں، ماننا ہے کوئی نہیں، صرف مطالبوں پہ مطالبے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں بنی اسرائیل کے 9 نشانیوں کا بھی تذکرہ کیا کہ جو ان پہ عذابوں کی صورت میں آئیں. اسی صورت میں آپ کو فرعون کی ہلاکت کا ذکر ملے گا، اور خاص طور پہ پھر پارے کینڈ پہ اصحاب کہف اور باغ والوں کا قصہ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا علم کے لیے سفر اور اللہ کی حکمتوں کو جاننا بھی ملے گا. تو میرے آپ کے لیے اس میں بنیادی طور پہ عمل کی بات کیا ہے کہ کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیاں اور اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ کے میرے لیے رکھا ہے اس پہ غور و فکر کر کے جیو، ایسا نہ ہو کہ تم بالکل اپنی مرضی سے جینے لگو. آئیے شروع کرتے ہیں، اور انشاءاللہ جہاں ہماری آیت تدبر آئے گی پھر ہم چیک لسٹ کو بھی دیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. پاک ہے وہ ذات، دیکھیے سورت سبحان اللہ سے شروع ہوتی ہے، پیار سے کہیے سبحان ربی العظیم. اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط رکھنے کے لیے تسبیحات بہت ضروری ہوتی ہیں. شعور کے ساتھ، جانتے ہوئے اور کبھی انجانے میں بھی سبحان اللہ کہتے رہے، آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ دل میں اللہ کی بڑائی بڑھتی جائے گی اور لوگوں سے آپ بے نیاز ہوں گے. اب کس بات پہ سبحان ہے پیچھے تو بات نہیں، لیکن آگے ایک بہت بڑی نشانی، اور وہ کیا؟ پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے. حقیقت میں وہی ہے سب کچھ سننے اور دیکھنے والا. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کا تذکرہ ہے. معراج کیا تھا؟ تبدیلیوں کا سفر تھا، امت کی تبدیلی تھی. مکی دور کا آخر تھا، جہاں مکہ والوں نے 13 سال تک ایک نعمت کو پانے کے باوجود انکار کیا. اللہ وہاں سے نکال کر اپنے نبی کو مدینہ میں لے جانا چاہتے تھے. معراج کے موقع پہ یہ جو سفر ادھر بتایا گیا یہ زمین پہ ہوا. اسی رستے میں اللہ کے نبی کو مدینہ کا شہر بھی دکھا دیا گیا، ہجرت کے راستے بھی دکھا دیے، اور ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ تم نے اب اس طرح سے ادھر آنا ہے. معراج کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے گناہ اور ثواب بھی دکھائے گئے، نیکیاں بدیاں دکھائی گئیں، کچھ لوگ جنت میں دکھائے گئے، کچھ جہنم میں، بہت سارے اعمال دکھائے گئے کہ کس طریقے سے لوگ وہ عمل دنیا میں جب کرتے ہیں تو آخرت میں اس کی کیا سزا ہے. اصل میں یہ سارا کچھ کیوں تھا؟ کیونکہ اللہ اپنے نبیوں کو علم الیقین دینا چاہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے خود دوسروں کو دین سکھانا ہوتا ہے. تو جب تک خود آپ کے اندر وہ دین نہیں ہوگا، آپ کو خود وہ کچھ نہیں ملے گا جو آپ دوسروں کو دینا چاہتے ہیں، تو آپ کبھی بھی دوسروں کو نہیں دے سکتے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج 2 حصوں میں تھا. یہ یہاں جو یہ زمینی سفر ہے، سورت نجم میں کچھ اشارے ہیں جس سے بیت المقدس سے آسمان کی طرف ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پر گئے تو آپ نے فرمایا کہ وہاں ابراہیم علیہ السلام ملے. آپ نے اپنی اس امت کو سلام کہا اور کہا کہ حجامہ کروایا کرو، حجامہ میں برکت ہے. اسی طرح اگر آپ چاہیں تو یہ لیکچر سن سکتے ہیں. हैं। अगर इस्लामिक मंथ के फोल्डर में आप जाएं किसी वेबसाइट पे या ऐप्स पे, तो वहाँ आपको रजब के महीने के अंदर मेराज के बारे में एक लेक्चर मिलेगा। और याद रखिए कि इन सारी चीज़ों को सुनाने का मकसद क्या होता है कि हमारा दिल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर जमा रहे और हम इस बात पे यकीन रखें कि अल्लाह ताला जो चाहे वो कर सकता है। फिर इसके बाद आप देखिए कि आगे जो बात शुरू हो रही है इसका ताल्लुक बनी इसराइल की हिस्ट्री से है। थोड़ा सा इसको समझिए, चूंकि शुरू से बनी इसराइल के साथ हमारा ताल्लुक चलता जा रहा है, तो बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने दुनिया में बहुत सारी नेमतें दी थी, लेकिन वो नेमतों को पाकर वो मकसद भूल गए और उनको बड़ाई याद रही। इस सिर्फ एक रुकू में बनी इसराइल के उरूज के दो दौर और जवाल के दो दौर अभी हम पढ़ेंगे। आप आयतें पढ़ेंगे आपको खुद ही अंदाज़ा होगा कुछ उरूज और जवाल की कहानी है, जो इस वक्त मैं आप बारीकियों में दूंगी भी तो आपको फ़ायदा नहीं होगा और उसकी ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन इसमें से अमल की बातें मेरे आपके और उम्मत होने के नाते यही हैं कि जब कौमें अल्लाह की किताबों को थाम लेती हैं उरूज मिलता है, जब किताबों को पसे पुश डालकर दूसरों के अफकार, दूसरों के नज़रियात, दूसरों की ख्वाहिशों को दीन बना लिया जाता है तो उस कौम का जवाल शुरू हो जाता है। और आज भी हम सब के लिए ये चीज़ मौजूद है कि कुरान को थाम ले, उम्मत मुस्लिमा का उरूज आहिस्ता आहिस्ता आपको मुझे नज़र आने लगेगा। और अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमें और हमारी औलादों को इस काम के लिए चुन लें। आइए अब इसी सोच के साथ इस हिस्से को पढ़ेंगे। وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ, हमने इससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी थी और इसे बनी इसराइल के लिए जरिए हिदायत बनाया था। नोट कीजिए, हर दौर की किताब किताब हिदायत होती थी। आज हमने क्या किया, इस किताब हिदायत को आज उम्मत मुस्लिमा ने क्या बना दिया, कभी सोचा आपने? आज मैं और आप अगर अपने मुसलमानों के हालात पे गौर करें ना, तो हमें हैरत होती है कि वो किताब जिसने इंसानियत को इज्जत दिलवानी थी, जिसने मुसलमानों को दुनिया में इज्जत दिलवानी थी, बड़ाई देनी थी, आज हमने उसको क्या कह दिया। एक पोएम है छोटी सी, आजकल आपको बहुत तरफ से आ रही होगी, कि कहते हैं कि वो शख्स मुसलमान भी नहीं है जिन्होंने ये पोएम लिखी, वो कहते हैं कि अमल की किताब थी, दुआ की किताब बना दिया, समझने की किताब थी, पढ़ने की किताब बना दिया, जिंदों का दस्तूर था, मुर्दों का मंशूर बना दिया, जो इल्म की किताब थी इसे ला इल्मों के हाथ में थमा दिया, तस्खीरे कायनात का दर्स देने आई थी सिर्फ मदरसों का नसाब बना दिया, मुर्दा कौमों को जिंदा करने आई थी मुर्दों को बख्शवाने पर लगा दिया। ए मुसलमानों, तुमने ये क्या किया। ये है इस सूरत बनी इसराइल का मैसेज। आज भी मैं और आप इस उम्मत को उठा सकते हैं, इस उम्मत की गिरती हुई साख को उठाने के लिए इस किताब को उठाना था। यही पैगाम कल के मुसलमानों का था, यही आज का था। तफसीलात क्या थी उस किताब की, इस ताकीद के साथ के मेरे सिवा किसी को वकील न बनाना, तुम इन लोगों की औलाद हो जिन्हें हमने नूह के साथ कश्ती पर सवार किया, और नूह एक शुक्र गुजार बंदा था, कान अब्दन शकूरा, अल्लाह हमें भी शुक्र गुजार बना दे। फिर हमने अपनी किताब में बनी इसराइल को इस बात पर भी वॉर्न किया या आगाह किया कि तुम दो मरतबा ज़मीन में फसाद अजीम बरपा करोगे और बड़ी सरकशी दिखाओगे। आखिरकार जब इनमें से पहली सरकशी का मौका आया तो ऐ बनी इसराइल, हमने तुम्हारे मुकाबले पर ऐसे बंदे उठाए, नोट कीजिएगा हमने उठाए, जो नहायत जोरावर थे, वो तुम्हारे मुल्क में घुस कर हर तरफ फैल गए। यहाँ गौर कर लें, जब कौमें बिगड़ी अल्लाह ने दूसरी कौमों को उनके ऊपर मुसल्लत कर दिया। ये एक वादा था जिसे पूरा होकर ही रहना था। इसके बाद हमने तुम्हें गलबे का मौका दे दिया, तुम्हें माल और औलाद से मदद दी और तुम्हारी तादाद पहले से बढ़ा दी। इन अक्सन तुम लिय अनफुसिकुम, देखो अगर तुमने भलाई की तो तुम्हारे अपने ही लिए भलाई थी, और बुराई की तो वो तुम्हारी अपनी जात के लिए बुराई साबित होगी। फिर जब दूसरे वादे का वक्त आया तो हमने दूसरे दुश्मनों को तुम पर मुसल्लत किया ताकि वो तुम्हारे चेहरे बिगाड़ दें और मस्जिद यानी बैतुल मकदस में इस तरह घुस जाएं जिस तरह पहले दुश्मन घुसे थे और जिस चीज पर इनका हाथ पड़े से तबाह करके रख दें। हो सकता है कि अब तुम्हारा रब तुम पर रहम करे, लेकिन अगर तुमने फिर साबिक रविश को दोहराया तो हम भी अपनी सजा को दोहराएंगे। और काफरे नेमत लोगों के लिए हमने जहन्नम को कैद खाना बना रखा है। आपको लग रहा है कि ये पुरानी आयतें हैं? ये आज उम्मत मुस्लिमा की कहानियां नहीं है, जब तक मुसलमानों ने इस किताब को थामे रखा, मुसलमान इस दुनिया में हिदायत का सूरज बन के भी चमके, तरक्की का सूरज भी थे। आज उम्मत मुस्लिमा को इस पैगाम को आम करने की ज़रूरत है कि इस हालत से निकलने का रास्ता क्या, उसका जवाब आपको अगली आयत में मिलेगा जो बड़ी खूबसूरत आयत है, इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम। हकीकत यह है कि ये कुरान वो राह दिखाता है जो बिल्कुल सीधी है, जो लोग इसे मानकर भले काम करने लगे, इन्हें ये बशारत देता है कि इनके लिए बड़ा अजर है, और जो लोग आखरत को ना माने, इन्हें ये खबर देता है कि इनके लिए हमने दर्दनाक अजाब मुहैया कर रखा है। अगर आप गौर से सुने तो इधर कुरान के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो क्या है, यहदी लिल्लती हिय अक़वम। अक़वम क्या होता है? सीधा रखने वाला। मैं इस आयत को पढ़ूँ तो मेरे जहन में क्या आता है? कुरान एक नेविगेटर है। आप गाड़ी में सफ़र करें और आपके सामने रास्ता दिखाने वाला एक नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ है, उसको फॉलो करते जाएंगे ना, आप देखेंगे उसके बाद आपके लिए आसानियाँ ही आसानियाँ हैं। जब तक मुसलमान इस कुरान को अपनी ज़िंदगी का राहबर और रहनुमा बनाते हैं, अल्लाह उनको दुनिया में इज्जत देता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का खुलासा है, आपने फरमाया कि ये कुरान क्या है, हादी, राह दिखाने वाला है। मन जाला हुई इमामन, जिसने इस कुरान को इमाम बनाया, ये कुरान उसको दुनिया में भी इज्जत देगा और आखिर में जन्नत में ले जाएगा। लेकिन जिसने इसको पीठ के पीछे डाल दिया, ऐसे लोगों को ये कुरान जहन्नुम की तरफ ले जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इस कुरान को थामे। और याद रखिए कि जो 19वीं सदी गुजरी है ना, ये कुरान को थामने की सदी थी। थाम लिया उम्मत ने, अल्हम्दुलिल्लाह, छोड़ा तो कभी भी नहीं था, बट अब वो हिदायत का सूरज बनकर चमकने वाले लोग जो हैं वो नजर आने शुरू हो गए हैं। आज हमारी यंग नस्ल के हाथों में कुरान आप देखेंगे, छोटी छोटी उम्रों के 18-20 साल के बच्चों के चेहरों पे आपको सुन्नतें दिखेंगी। क्यों? कि अब सो सो के उठ चुके हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये बशारतें उनके लिए। अल्लाह ताला हमें जिंदगी में उम्मत का रुझ दिखाए। शर्त यह है कि इस कुरान को रहनुमा बना लीजिए। इंसान शर इसी तरह मांगता है जिस तरह खैर मांगनी चाहिए। देखिए जल्दबाजी, पूरे पारे से आप मिसालें नोट कीजिएगा। शर मांगते तो खैर मांगनी चाहिए, क्या मतलब? बददुआएं नहीं रहनी चाहिए। बहुत सारे लोग अपने बच्चों को बददुआ देते हैं, तू ऐसा हो जाए, तेरे साथ वैसा हो जा। फरमाया कि अगर अल्लाह ताला तुम्हारी हर बात को पकड़ ले तो तुम्हारा हाल क्या हो जाए। इंसान बड़ा ही जल्दबाज वाक़े हुआ है। देखो, हमने रात और दिन को दो निशानियां बनाया। रात की निशानी को हमने बेनूर बनाया और दिन की निशानी को रोशन कर दिया, ताकि तुम अपने रब का फजल तलाश कर सको। क्या पता चला कि रात आराम के लिए और दिन काम के लिए। जिसने इस असूल को तोड़ा, उसकी जिंदगी की बरकत चली गई। तो यह अमल की बात लिखिए, बिला वजह नाइट शिफ्ट्स नहीं लेनी चाहिए, बिला वजह रातों को काम नहीं करना चाहिए, वरना अगले सारे दिन की बरकत तो जाएगी, नमाजें जाने का भी डर होता है। और माहो साल का हिसाब मालूम कर सको, इस तरह हमने हर चीज को अलग अलग मुमैस करके रख दिया। और बड़ी प्यारी आयत है जिसपे आज की हदीस भी इंशाल्लाह हम अभी देखेंगे, वकुल्ला इंसान अल्ज़मनाहु तायरहू फी उनुक वनुख्रिजु लहू यौमल क़ियामति किताबा यल्क़ाहु मंशूरा। इक्रा किताबक कफा बि नफ्सिकल यौम अलैका हसीबा मन इहतदा फइन्नमा यहतदी लिनफ्सिह वमन दल्ल फइन्नमा यदिल्लु अलैहा वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़्रा उख़्रा वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीना हत्ता नबअ्थ रसूला। हर इंसान का शगुन हमने उसके गले में लटका रखा है, यानी कोई दूसरा किसी को खुशकिस्मत या बदबخت नहीं कर सकता, इंसान के आमाल उसको खुशकिस्मत या बदबخت करते हैं। अरबों का तसव्वुर क्या था कि सितारे और चिड़ियाएं और परिंदे किस्मत का हाल जानते हैं, परिंदे उड़ा उड़ा के किस्मत का हाल मालूम करते थे, ये हफ्ता ऐसा गुजरेगा, ये तारा आपके लिए ठीक है, इस वक्त आपके सितारे गर्दिश में थे। अल्लाह कहते नहीं, तुम्हारे आमाल तुम्हारी खुशबख्ती और बदबख्ती की सूरत में दिखेंगे। और फरमाया क़यामत के रोज़ हम एक नविश्ता के लिए निकालेंगे जिसे वो खुली किताब की तरह पाएगा। पढ़ अपना नामे अमाल, आज अपना हिसाब लगाने के लिए तो खुद ही काफी है। और उस किताब के मुताबिक फैसला क्या होगा, वो असूल बयान है, जो कि राह रास्त इख्तियार करे इसकी रास्त रवि इसके अपने ही लिए मुफीद है, और जो गुमराह हो इसकी गुमराही का बवाल इसी पर है। कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ न उठाएगा, और हम अजाब देने वाले नहीं हैं जब तक के लोगों को हक और बातिल का फर्क समझाने के लिए एक पैगंबर न भेज दें। इन आयत में नामे अमाल की बात हुई। हम सब के गलों में हमारे नामे अमाल लटके हुए, हार पहने तो सब देखते हैं, नामे अमाल खुद को भी नहीं दिखता। क़यामत के दिन वही एक रैकेट की सूरत में पेश किया जाएगा। अल्लाह ताला चाहे एक छोटी सी माइक्रोचिप की सूरत में हमारी पूरी ज़िंदगी के हिसाब किताब हमारे सामने रख दें। आज ज़िंदगी में मेरे आपके हाथ में है, एडिट कर सकते हैं, अंडू कर सकते हैं, अभी मौका मौजूद है। जब मर गए इन कते अमल हो, नामे अमाल इंसान का उस वक्त ख़त्म होगा। क़यामत के दिन हमारा इनफरादी मुहासबा भी होगा और इज्तमाई मुहासबा भी होगा, कितने गुना किए, कितनी नेकियाँ की, किन हालात में की, क्या सोचा था, क्या किया था, वहाँ अल्लाह ताला सब कुछ आपके सामने, मेरे सामने रख देगा। करना क्या है कि आज आप और मैं इसके ऊपर गौर करें। आप देखिए पीछे से सूरत का थीम भी जहन में रखिए, आजिला और जल्दबाजी और उम्मत का, कौम का रुज और जवाल। आज हमारे यहाँ एक ये भी बड़ी मुसीबत है, हालात को कोसते रहते हैं, उम्मत ऐसी हो गई, उम्मत के हालात ख़राब हैं, इन्होंने संवरता नहीं। अल्लाह ताला आपको मुझे यहाँ दे रहे हैं कि जिस तरह तुम अपना इनफरादी मुहासबा करके अपनी इसलाह कर सकते हो, इज्तमाई मुहासबा भी कर सकते हो। ज़रूरत है इस बात की कि तुम्हें एक दफ़ा नीयत तो करो। और आप और मैं अगर अपने इस नामे माल को इस दुनिया में देखना चाहते हैं तो सिर्फ अपनी एक हफ्ते की एक्टिविटीज़ को जमा कर लें। क्या जाता होगा रोज़ किसी का बड़ा खूबसूरत कॉल है, जब रोज़ सुबह होती है अल्लाह ताला अपनी बेहतरीन चीज़ें पेश करता है, और जब शाम होती है तुम बताओ तुम क्या अमाल पेश करते हो। अल्लाह ताला मुझे आपको तौफीक दे। और याद रखिए क़यामत के दिन ये सब कुछ पेश होगा, इसी के बेस पे होगा। ये हमारी किताब ज़िंदगी बन रही है। कुछ लोगों को डायरी लिखने का शौक़ होता है, ये आपकी मेरी डायरी है। कल सारा हिसाब किस सूरत पे होगा, एक हदीस आपके साथ शेयर करते हैं। यही है हमारी आज की हदीस, सही मुस्लिम की रिवायत है, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है। कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे। ज़रा से इस पास बैठने को भी इमेजिन करें, कितने खुशकिस्मत थे सहाबा। आज हम कहते हैं हमें नबी का दीदार ही हो जाए, लोग कहीं दरूद कर करके रात को वजीफे करके सोते हैं, ख्वाब में अल्लाह के नबी दिखे। वो लोग कितने खुशबख्त हैं कि जो अल्लाह के नबी के सामने बैठते थे और वही उतरती थी। हमें तो वो दौलत नहीं मिल सकती आज, लेकिन नबी की हदीसें पढ़कर हम इस दौलत को पा सकते हैं। फिर क्या हुआ, आप हंस पड़े। आपने पूछा क्या तुम्हें मालूम है मैं क्यों हंसा हूँ। हमने अर्ज़ की अल्लाह और उसका रसूल ज़्यादा जानता है। आपने फरमाया मुझे बंदे की अपने रब से बात पर हंसी आई है। अब एक बंदे का हिसाब किताब है, उसकी बात आप बयान करें और मुस्कुरा दिए। बंदा कहेगा ऐ मेरे रब क्या तूने मुझे जुल्म से पनाह ना दी। वो फरमाएगा क्यों नहीं, यानी आपने कहा था कि मैं किसी पे जुल्म नहीं करूंगा। अल्लाह ताला कहेंगे क्यों नहीं। बंदा कहेगा मैं अपने खिलाफ अपने सिवा और किसी की गवाही जायज करार नहीं देता, यानी आज मैं किसी की गवाही तस्लीम नहीं करूंगा। मसलन को मेरा नाम लेकर के ये गुनाह करती थी, ये चुगली करती थी, मैंने खुद इसको महफिल में गीबत करते सुना, तो बंदा कहेगा मैं नहीं मानूंगा इसको। अच्छा नहीं मानोगे तो क्या होगा। अल्लाह ताला फरमाएगा आज तुम्हारे खिलाफ तुम्हारी अपनी गवाही ही काफ़ी है। कफा बि नफ्सिकल यौम अलैका हसीबा, या किरामन कातिबीन की गवाही काफ़ी होगी। आपने फरमाया फिर इसके मुंह पर मोहर लगा दी जाएगी। इमेजिन करें अगर यहीं दुनिया में टेप लेकर, स्कॉच टेप लेकर हमारे होंठ बंद कर दिए जाए, और इसके अज़ा से कहा जाएगा बोलो। तुम जो कहते हो कि दूसरों की गवाही नहीं मानूंगा तो तुम्हारे अपने जिस्म के अज़ा तुम्हारी गवाही दें। बोलो फिर इसके अज़ा इसके अमाल का बयान करेंगे, फिर इसके और इसके कलाम के दरमियान तख्लिया किया जाएगा, तख्लिया फासला तन्हाई। फिर वो कहेगा दूर हो दफा हो, मैं तुम्हारी तरफ से ही झगड़ रहा था। यानी इंसान के अपने जिस्म के अज़ा उसके खिलाफ गवाहियां देंगे। आपके मेरे लिए ये नुक्ता गौर का है। आज इसी जिस्म को संवारने और सजाने में पड़े रहते हैं, इसी की फिक्रें कर रहे होते हैं, इसी को देख रहे होते हैं, तो दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें ऐसे काम करने की तौफीक दे कि क़यामत के दिन जिस्म के ये अज़ा हमारे खिलाफ ही ना बोले। फिर फरमाया जब हम किसी बस्ती को हलाक करने का इरादा करते हैं तो इसके खुशहाल लोगों को हुक्म देते हैं और वो इसमें नाफरमानियाँ करने लगते हैं। इसको ज़रा सा सोच लें, नाफरमानी अमूमन खुशहाल लोगों की तरफ से होती है, बड़ों का बिगाड़ पूरी कौम का बिगाड़ बन जाता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने यहाँ इनकी बात करके बता दिया कि जो ट्रेंड सेटर्स होते हैं अमूमन वो माशरे के खाते पीते और बड़े लोग होते हैं, तब अजाब का फैसला इनकी बस्ती पर चिस्पा हो जाता है और हम इसे बर्बाद करके रख देते हैं। देख लो कितनी ही नस्लें हैं जो नूह अलैहिस्सलाम के बाद हमारे हुक्म से हलाक हुई। तेरा रब अपने बंदों के गुनाहों से पूरी तरह बाखबर है और सब कुछ देख रहा है। यानी आपको मुझे अपना नाम अमल नहीं दिखता, पर अल्लाह को दिखता है। जरा सोचें, चलिए आजकल तो रमजान है, काफी अच्छी ही चीजें जाती होंगी। हर रोज हमारे जो अमल जाते हैं, जो हमारी आदतें जाती हैं, जो हमारी खराबियां जाती हैं, उसको देखकर अल्लाह ताला की निगाहों में हमारी क्या इज्जत रह जाती होगी। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि वो आपको मुझे अपने नामे अमाल की फिक्र लगा दे। आज मौका है, कल नहीं होगा। आज कर सकते हैं, कल नहीं कर सकेंगे। अब नामे अमाल को जो चीज सबसे ज्यादा खराब करती है ना, प्ल्यूट करती है, वो हुब्बे दुनिया। आयतें हैं तदब्बुर की हमारे पारे के हिसाब से भी। मन का न युरीद अलाजिला तअज्जलना लहू फीहा मा नशा। जो कोई इस दुनिया में जल्दी हासिल होने वाले फायदों का ख्वाहिशमंद हो, इसे हम यही दे देते हैं, जो कुछ भी जिसे देना चाहें, फिर इसकी किस्मत में जहन्नुम लिख देते हैं। अल्लाह हमारी किस्मत में जहन्नुम को ना लिखना। जिसे वो तापेगा मलामत ज़दा और रहमत से महरूम होकर, और जो आखरत का ख्वाहिशमंद हो इसके लिए सही भी करे जैसी कि इसके लिए सही करनी चाहिए। इसको हाईलाइट करें। कोशिश तो सारे करते हैं आखरत की, पर उतनी नहीं करते जितनी करनी चाहिए। सा लहा सा यहा। और हो वो मोमिन तो ऐसे हर शख्स की सही मशकूर होगी। इनको भी और उनको भी, दोनों फरीकों को हम दुनिया में समान अजीज दिए जा रहे हैं। ये तेरे रब का अतिया है और तेरे रब की अता को रोकने वाला कोई नहीं। मगर देख लो, दुनिया ही में हमने एक गिरोह को दूसरे पर कैसी फजीलत दे रखी है, और आखरत में इसके दर्जे और भी ज्यादा होंगे और इसकी फजीलत और भी ज्यादा बढ़ चढ़ कर होगी। यहाँ अगर आप गौर करें तो दुनिया के लिए एक दूसरा नाम इस्तेमाल हुआ जिसको आजीला कहते हैं। उजलत कलब सुरतू में आपने सुना, दुनिया आखिरत के मुकाबले में आजीला है। आखिरा और आजीला ऑपोजिट है एक दूसरे का। आखिरा आखिर में आने वाली, आखरा बाद में आने वाली, आजीला फौरी आने वाली। आप कह लीजिए दुनिया नकद है और आखिरत उधार है। अल्लाह सुबहान तला ने इस एक आयत में लोगों को तवज्जो दिलाई, और वो क्या है कि ये दुनिया तुम्हें उतनी मिलेगी जितनी मैं चाहूंगा, तब मिलेगी जब मैं दूंगा। लेकिन अगर सिर्फ दुनिया मांगोगे, रब बनाती ना फिर दुनिया ही कहते रहोगे, तो याद रखो कल आखरत में तो कुछ होगा नहीं। दुनिया भी उतनी मिलनी है जो कि तुम्हारे नसीब में थी। आप इमेजिन कीजिए किसी के दो गोदाम हो और दोनों जल जाएं। एक का माल इंश्योर्ड था, दूसरे का अनइंश्योर्ड था। दुनिया की मिसाल से समझ लें, जिसका जला है इंश्योर्ड वो खुश होगा, चलो पुरानी चीजों की जगह नहीं आएंगी, पैसे मिल जाएंगे। और जिसका अनइंश्योर्ड था उसका तो दिवालिया हो गया, बैंकरप्सी हो गई। अब ये दुनिया की इंश्योरेंस को पीछे कर दें, क्या है जायज क्या नहीं उसको नहीं देखें। यहां देखिए, मोमिन वो है जिसका दुनिया का माल इंश्योर्ड होता है और आखरत का भी। अल्लाह सुबहान ताला ने दुनिया के नुकसान और दुनिया की नाकामियों को आखरत में पूरा करना है। कांटा भी चुभेगा वहां खैर मिलेगी। अल्लाह सुबहान ताला ने आपके मेरे लिए यहां एक पैगाम दिया है, और वो क्या कि आज इस दुनिया में अपनी उस आखरत की फिक्र कर लो। आज आप देखिए कि मैं और आप दुनिया के साथ आखरत की कोशिश तो करते हैं, जिसमें एक यहां हमारा आके बैठना भी है। इस वक्त हम सब इसीलिए बैठे हैं ना, इसी में हमारी फजर की नमाज है और इसी में हमारा रोजे से होना भी है। कोशिशें तो करते हैं, लेकिन मामला क्या है? सा लहा सा यहा। मैं इसको एक छोटी सी मिसाल से समझाती हूँ कि ये कोशिशों का आगाज कैसे होता है। आखरत की कोशिश इरादा, और आपने देखा कि दुनिया के लिए सिर्फ ख्वाहिश की बात है, आखरत के लिए इरादा भी करना पड़ता है। आप देखिए कि कोशिश का आगाज इल्म हासिल करने से होता है। आप जानने लग जाते हैं किस चीज से आखरत बनेगी, किस से आखरत बिगड़ेगी, इस दुनिया की क्या हकीकत है, उस दुनिया की क्या हकीकत है। तो सबसे पहली चीज सा या हा में क्या है? इल्म हासिल करना। जब आप जानते ही नहीं तो आप उसकी कोशिश कैसे करेंगे? आपको पता ही नहीं है आखरत कितनी बड़ी है, जहन्नुम कितनी खौफनाक है, जन्नत कितनी खूबसूरत है, कोशिश कैसे करेंगे? अब जब आपने इल्म हासिल किया ना, अब इसके बाद इरादे बनते हैं। दूसरी चीज इरादे, अरादा भी हा। इरादे कब होते हैं? जब आप इल्म की महफिल में बैठे होते हैं। जैसे आप में से बहुत सारों के दिल में इस वक्त कई इरादे बन रहे होंगे, हर पारा आपसे कई इरादे करवाता होगा, कितनी नियतें करते होंगे, जिसका अमली मौका कब आएगा? जब आप यहीं बैठ के इरादे को तकमील पहुंचा दें। दिल की मट्टी नरम होती है। जैसे मैं मिसाल देती हूँ अक्सर कि मोमबत्ती जब पिघली होती है ना, तो उसको जिधर मर्जी मोड़ लें, एक दफा बत्ती बंद कर दें ऊपर से, तो वो जम जाएगी टेढ़ी के टेढ़ी। ये जो जगह है ना इल्म हासिल करने की, ये इरादों को तकमील देने वाली जगह है। वरना यहां इरादे बनेंगे, दरवाजे तक पहुंचने में कुछ ठंडे होंगे, गाड़ी में बैठ के जरा से ठंडे, और बाद में तो भूल भी जाएंगे। नेकी का इरादा करें, चल पड़े, मजीद नेकियों के मौके मिलेंगे। और याद रखिए, पहले इल्म, फिर इरादा, फिर इरादे पे कोशिश। अब आप देखिए कि जब आप नेकी का इरादा करेंगे ना, आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह आपको चुन लेगा। आज के इस हिस्से से पीछे हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ा, 10 खूबियां थी। आप इस इब्राहिम के सफर को इस एक आयत के ऊपर फिट कर लें। अगर सिर्फ ख्वाहिश कर रहे होते तो ये सब मिलता, सिर्फ दुआ कर रहे होते जन्नत की तो जन्नत मिल जाती, सिर्फ नीयत कर रहे होते जन्नत की तो मिल जाती। हम में से बहुत सारे लोगों ने जन्नत को सिर्फ दुआओं, ख्वाहिशों और तमन्नाओं पर रखा हुआ है। जबकि सायहा, अपने आप से पूछिए, क्या वाकई मेरी इतनी कोशिशें हैं कि मैं जन्नतुल फिरदौस तक पहुंच सकूं? क्या मेरी इतनी कोशिशें हैं कि पुल सरात से बिजली की तेजी की तरह से गुजर जाऊं, या लुढ़कती पुढ़कती जाऊंगी? तो जैसी आज दुनिया की कोशिश है, वहां की रफ्तार वही होगी। आज जिस स्पीड से सिराते मुस्तकीम पे चल रहे हैं ना, इसी स्पीड से इंशाल्लाह पुल सरात से गुजर जाएंगे। तकलीफें आएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। अल्लाह सुबहाना ताला ने आपके मेरे लिए अगर कोई तकलीफ लिखी है, वो तो रहेगी, तो करें क्या? आखिरत के इरादे करें। इस आयत पे आपने कल तक गौर करना है, मेरी कोशिशों का रुख क्या है, मेरे गमों, मेरी खुशियों का रुख क्या है। और खास तौर पे इस दफा आपने जो हाईलाइट करना है, सायाह को। निहारी पकाएं, अभी आधी पकी, आटा डाला, चूल्हा बंद कर दिया, खाएगा कोई? बेकार, गोश्त भी जाया किया, बिजली भी जाया की, और बाकी चीजें भी जाया की। उसको पकाइए और पकाइए, सब्र करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, वक्त लगेगा, लेकिन आखिर में नतीजा बड़ा मजे का होगा। यही आपकी मेरी कोशिश। अगर आज के मुसलमान को यही पैगाम है, कोशिशें तो हैं, उतनी नहीं है कि जिसके साथ कुछ मिले। देखिए, शायद यहाँ का टिकट मुझे नहीं पता, 1 यूरो होगा ट्राम में एक जगह से दूसरी जगह जाने पे, ऐसे ही है ना, 1 यूरो लगा लेते हैं, कोई बात नहीं। किसी के पास 80 पीस हैं, पैनीस हैं, पूरा यूरो नहीं, बिठा लेगा ट्रेन वाला, चलती ट्रेन से निकालेगा कि तुम्हारे पास पैसे पूरे नहीं है। कभी आपने मैंने सोचा कि जन्नत की ट्रेन से उतार दिया जाएगा, नहीं तेरी नेकियां पूरी नहीं है, वहां कितनी हसरत होगी। घर में हमारे पास हजारों पड़े होते हैं, सफर में चंद 100 भी ना हो, क्या कहेंगे? कोई मौका दे घर से जाके ले आए, घर मौजूद है ले लेते हैं। आज अमल का वक्त है, असल जो बात है ना, अभी अमल का वक्त मौजूद है। क्यों सुस्ती के मारे हैं? क्यों थोड़ी नेकी पे राजी हूं? क्यों एक नेकी पे राजी हूं? क्यों मैं आसान नेकी लेती हूं, मैं मुश्किल क्यों नहीं लेती? वेलकम रमजान के सेशन में एक से ज्यादा बार एक लेक्चर किया डिफरेंट लोगों की मिसालों से, असलाफ का रमदान, तो उसमें मुझे भी एक बात याद आ गई, अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु और दूसरे लोग भी क्या करते थे, दुआ करते थे कि अल्लाह गर्मियों के रोजे हों, लंबी दोपहरें हों, गर्मियों के दिन हों, लंबे दिन हों, और सख्त शिद्दत हो और प्यास लगी और हम आगे रोजे रखें। और उसी में पढ़ के सुनाया था कि हजरत अबू बकर सिद्दीक गर्मियों में नफली रोजे कसरत से रखते थे, सर्दियों में नहीं रखते थे, कहते उसमें क्या तकलीफ है। अब आप पर मैं सोचे, जिनको जन्नत दिखती है ना, वो उसकी कीमत जेब में लेके बैठते हैं। आप इतवार बाजार जाएंगे ना, आप थोड़े से पैसे रख लेंगे, आपको पता इतने में सब्जियां और सब कुछ आ जाएगा। आप वहां से उठ के चले, आप समझ लीजिए कि शहर के किसी आम बाजार में गए, थोड़े और रख लेंगे, शायद कोई घर की चीज भी पसंद आ जाए, और आप किसी बड़े पॉश मॉल और किसी ब्रांड की दुकान पे जाएं, तो पैसे चेक करते हैं कि कार्ड चेक करते हैं? पैसे तो थोड़े होंगे, कार्ड चेक करेंगे वो है, ताकि जितना भी खर्च कर लिया कर लिया। बस ये सोच लें, निकली हूं घर से जन्नत लेने, पूरी ले रही हूं, और याद रखें नेकियों में भी रखने हैं। हम तो नेकियां करने में इतने गुनाह करते हैं कि उसके लिए फिर मजीद तौबा इस्तिगफार की जरूरत है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इन नेकियों को अच्छे तरीके से, आला तरीके से करने वाला बना दे।